दिन भर 31 मई बृहस्पतिवार सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। लोकसभा विधानसभा उपचुनावों के नतीजों में पिछड़ गई बीजेपी। कैराना में एकजुट विपक्ष बीजेपी पर पड़ा भारी।
अहंकारी लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था, हमारा कोई विकल्प नहीं है। ऊपर वाले ने विकल्प निकाल दिया, सब साथ मिलके चलेंगे और इनको धूल चटाएंगे इंशाल्लाह 2019 में।
शिवसेना ने कहा बीजेपी के साथ भविष्य में कोई गठबंधन नहीं करेंगे।
उद्धव ठाकरे लगातार आक्रामक हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन केंद्र की सरकार में शिवसेना का अभी भी एक मंत्री है और महाराष्ट्र की सरकार में शिवसेना अभी भी साझेदार है।
डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात के लिए सिंगापुर और अमेरिका में बातचीत जारी होंगी। और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। देश के अलग अलग राज्यों की 4 लोकसभा और 11 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर सपा और रालोद गठबंधन की उम्मीदवार तबस्सुम बेगम ने जीत दर्ज की है। कुल 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 में जीत मिली, वहीं कांग्रेस को 4 और अन्य के खाते में 6 सीटें आई हैं। लोकसभा की बात करें तो 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र की पालघर सीट जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया सीट पर एनसीपी ने जीत दर्ज की और नागालैंड की टोकेहो सीट पर एनडीपीपी के उम्मीदवार को जीत मिली। मानवाधिकारों के लिए बनी यूरोपियन कोर्ट ने लिथुआनिया और रोमानिया को आदेश दिया है कि वे अल कायदा समूह के उन 2 संदिग्धों को मुआवजा दें जिन्हें CIA के एक खास कार्यक्रम के तहत कैद में रखा गया था। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों ही संदिग्धों को एक खुफिया जेल में बंद किया गया था जिसके बारे में सरकार को जानकारी थी। सरकार यह भी जानती थी कि वहां उनका शोषण हो सकता है। रोमानिया के खिलाफ मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट के उपाध्यक्ष लिनोस अलेक्जेंडर ने कहा, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि CIA के हाई वैल्यू डिटेंशन कार्यक्रम के लिए राज्य ने आर्टिकल 3 के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके तहत किसी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार करना भी शामिल है। ये थे मानवाधिकारों के लिए बनी यूरोपियन कोर्ट के उपाध्यक्ष के शब्द। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से प्योंगयांग में मुलाकात की है। यह पहली बार है जब कोई उत्तर कोरियाई नेता रूसी अधिकारी से मिला है। लावरोव ने किम जोंग उन को भी रूस आने का निमंत्रण दिया है। मुलाकात के बाद लावरोव ने कहा कि उत्तर कोरिया के साथ संभलकर बातचीत होनी चाहिए, इसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, मैं रूस और उत्तर कोरिया के बीच साझा बातचीत और समझ को सामने रखना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि दोनों ही कोरियाई देशों के साथ रूस के संबंध बेहतर हो सकें। हम यह समझते हैं कि परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया बेहद जटिल है और इसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। ये थे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मोजाम्बिक सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने चीन की एक खदान कंपनी को अपना काम बंद करने का आदेश सुनाया। दरअसल यह कंपनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से खदान कर रही थी। अपनी रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था कि हाईओ नामक कंपनी ने खदान के चलते नामपुला प्रांत में आने वाले कई गांवों को प्रभावित किया था। हालांकि इस चीनी कंपनी ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत बताया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पूर्वी लीबिया के शहर डर्ना पर कब्जा जमाने की जंग लगातार तेज होती जा रही है और इस जंग के चलते वहां रहने वाले लोगों के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल खलीफा हफ्तार के समर्थन वाली सेना और स्थानीय लड़ाकों के बीच संघर्ष जारी है। इस संघर्ष में रिहायशी इलाकों पर असर पड़ा है। मार्च के मध्य से अभी तक प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई है। रिपोर्ट के अनुसार डर्ना शहर में बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई है। पूर्वी लीबिया में डर्ना एकमात्र शहर है जिस पर जनरल हफ्तार का नियंत्रण नहीं है। डेनमार्क ने अपने देश में आम जगहों पर पूरे चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा करने वाला डेनमार्क सबसे नया देश है। डेनमार्क की संसद ने कहा कि यह प्रतिबंध अगस्त से शुरू हो जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर $160 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा। दिन भर संदीप सोनी के साथ। भारत में लोकसभा की 4 सीटों और अलग अलग राज्यों में विधानसभा की 11 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ गए हैं। नतीजों से केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, वहीं विपक्ष का हौसला कुछ कुछ बढ़ गया है। सभी नतीजों की करेंगे हम बात। पहले चर्चा उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा और विधानसभा की एक एक सीट पर हुए उपचुनाव पर विपक्ष ने बीजेपी को करारी मात दी है। समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
विपक्षी गठबंधन का दूसरा प्रयोग भी जब सफल हो गया तो जश्न स्वाभाविक था। कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा सीट पर गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत की खुशी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कुछ ज्यादा ही सुनाई दी। नूरपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के नईमुल हसन ने जीत दर्ज की तो कैराना लोकसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार तबस्सुम हसन के नाम रही। तबस्सुम हसन उपचुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुई थी और इन दोनों उम्मीदवारों को बीएसपी और कांग्रेस का भी समर्थन था। ये दोनों ही सीटें पहले बीजेपी के खाते में थी। जीत के तुरंत बाद तबस्सुम हसन की ये प्रतिक्रिया थी।
उन्होंने ये अहंकारी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि हमारा कोई विकल्प नहीं है, तो विकल्प तो ऊपर वाला निकालता है। ऊपर वाले ने विकल्प निकाल दिया, सब साथ मिलके चलेंगे और इनको धूल चटाएंगे इंशाल्लाह 2019 में।
वही कैराना में बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने उसी शालीनता के साथ हार स्वीकार की जिस शालीनता के साथ चुनाव से पहले वो अपनी जीत के दावे कर रही थी।
जो भी फैसला आया है उसको मैं सम्मान करती हूँ।
कैराना लोकसभा सीट बीजेपी के लिए जहां प्रतिष्ठा का प्रश्न थी तो गठबंधन की ताकत आजमाने के लिए इसे लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा था। लेकिन इन सब के अलावा इस सीट की जीत और हार राष्ट्रीय लोकदल का अस्तित्व तय करने वाली मानी जा रही थी। जीत से गदगद राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी बोले,
मैं सभी सहयोगी पार्टियों को उनके कार्यकर्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो नफरत का रथ एक चालू हुआ था और जिस क्षेत्र से एक एक देश की राजनीति बदली थी, मुझे लगता है वो रथ हमने रोकने का काम किया। जो देश के असल मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, नौजवान के मुद्दे हैं, वे बाकी सब विषयों पर हावी रहे। जिन्ना हारा, दंगा हारा, गन्ना जीता।
गठबंधन की ताकत आजमाने के लिहाज से नूरपुर का भी महत्व उतना ही था जितना कि कैराना का। नूरपुर से बीजेपी उम्मीदवार अवनी सिंह ने अपनी हार की वजह ये बताई,
चाहे ये सारी पार्टी एक हो गई है, गठबंधन हो गया है, फिर भी बीजेपी ने मुकाबले की टक्कर ली है और आगे भी लेती रहेगी। सिर्फ 5,000 का अंतर है।
गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी ने कैराना सीट जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। मुख्यमंत्री योगी यहां 2 बार सभा करने आए और उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य, सांसद और विधायक यहां लगातार बने रहे। राजनीतिक हलकों में इस उपचुनाव को 2019 के रिहर्सल के तौर पर भी देखा जा रहा था, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कहते हैं कि 2019 पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सारे दल मिले हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रही है और लोकसभा चुनाव में जब लोग देश के प्रधानमंत्री की तुलना करेंगे तो ये बिल्कुल पलट जाएगा।
लेकिन 2014 में उत्तर प्रदेश से 71 सीटें जीतने वाली बीजेपी के पास अब सिर्फ 68 सांसद रह गए हैं। 5 सदस्यों के साथ लोकसभा में पहुंची सपा के पास सांसदों की संख्या 7 हो गई है और खाता भी न खोल पाने वाला राष्ट्रीय लोकदल अब लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है।
ये थी समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात पर बड़ा जोर दिया कि ये नतीजे किसानों की अनदेखी का नतीजा है। अखिलेश यादव की इस बात में कितना दम है, समझने के लिए मैंने वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी से बात की।
ये बात अखिलेश इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने भी मुद्दा जिन्ना बनाम गन्ना बताया था, तो उस संदर्भ में अगर देखें तो बात सही है। एक्चुअली गन्ना को गन्ना से केवल नहीं देखना चाहिए, ये जो किसानों की या खेतिहर मजदूरों की या उनके साथ जुड़े हैं छोटे व्यापारी भी, उनकी सबकी जो सामूहिक समस्या है मुझे लगता है, और उसको नेग्लेक्ट करने का ये परिणाम है, उसके उपेक्षा करने का परिणाम। क्योंकि देखिए गन्ने के साथ साथ गेहूं पूरे यूपी में पैदा हुआ है और वो बेचने के लिए किसान जा रहा है, मंडियों में ख़रीदा नहीं जा रहा है, दो तीन दिन पड़े रहते हैं तो फिर उसको आढ़ती को देना पड़ता है कम दाम में। इसके पहले धान के साथ हुआ, खेतिहर मजदूरों पर भी असर पड़ता है, फिर लोकल जो बाज़ार है उस पर भी असर पड़ता है। जाहिर है कि ये बात सही है कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाकों में विकास की जो भी योजनाएं हैं उनका ठीक से लाभ नहीं मिल पा रहा, या जो फोकस भी है वो उधर नहीं है। वो खाली खेती की उपज की बात नहीं है, जो गांव के सरकारी स्कूल हैं, अस्पताल हैं और भी सर्विसेज हैं। इस हद तक सही है कि किसानों और गांव की जो उपेक्षा है उसके लिए ये परिणाम जिम्मेदार है, और ये बात केवल बीजेपी के लिए लागू नहीं होती, अखिलेश भी इसी वजह से हारे थे।
अच्छा रामदत्त जी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि ये चुनाव नहीं उपचुनाव है और उपचुनाव अलग तरीके से लड़ा जाता है, चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और उस हिसाब से नतीजे बदल जाते हैं। तो आपको लगता है कि उपचुनाव को उपचुनाव की तरह देखकर ही देखा जाना चाहिए, या इसे उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी तस्वीर की तरह भी देखा जा सकता है?
ये बात उनकी तब सही होती जब बीजेपी उसको उपचुनाव की तरह लड़ती, लेकिन जिस तरह से योगी जी ने वहाँ अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाई, जिन्ना बनाम गन्ना और बहुत सारी बातें कही, जिस तरह से प्रचार बंद होने के बाद भी प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा की जाती है कि देश का प्रधान सेवक है वो कानून मर्यादा इन सब का पालन करेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बगल में जा करके और रैली की और उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ, तो खुद बीजेपी ने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी मोदी और योगी ने, तो इसलिए वो उपचुनाव की तरह नहीं है, उसको इसलिए मीडिया उसको इस रूप में देख रहा है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर बाकी राज्यों में हुए उपचुनावों के नतीजों का जायजा लेते हैं, अब करेंगे विश्लेषण उनका भी, लेकिन पहले नवीन नेगी की ये रिपोर्ट सुनते हैं।
बिहार के जोकीहाट विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राजद के उम्मीदवार शहनवाज आलम ने 40,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने सत्तारूढ़ जदयू को मात दी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपनी इस जीत को इन शब्दों में बयां किया।
जनता ने ये साबित कर दिया है कि ये अवसरवाद पर लालूवाद की विजय है, और लालू जी एक विचार ही नहीं बल्कि एक विज्ञान है।
पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां महेश तल्ला विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस अपनी सीट बचाने में कामयाब रही है। कर्नाटक की आरआर नगर सीट और पंजाब की शाहकोट सीट में कांग्रेस को जीत मिली। वहीं उत्तराखंड की थराली सीट पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही। महाराष्ट्र की बात करें तो भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर एनसीपी ने जीत दर्ज की। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने जीत के बाद कहा,
पिछले चुनाव में मेरे खिलाफ में जब वोट गिरा तो उसका भी अब लोगों को एहसास होने लगा है कि डेफिनेटली हम लोगों से जो हमारे इस क्षेत्र का विकास हो रहा था, हमारे यहाँ की जो प्रगति हो रही थी, उसमें रुकावट आई है।
महाराष्ट्र की ही पालघर लोकसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। यहाँ बीजेपी ने शिवसेना को हराया है। वहीं पसुलकड़े गांव विधानसभा सीट में कांग्रेस को जीत मिली। पालघर सीट पर चुनाव हारने के बाद शिवसेना ने अपनी नाराजगी जाहिर की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी को अब दोस्तों की जरूरत नहीं रह गई है।
पक्षांतर्गत लोकशाहीचे धडे देतो आणि आमच्यावरती काही बंधन टाकतो, ती बंधन आम्ही स्वीकारतो, कारण लोकशाहीसाठी।
उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि बीजेपी को अब दोस्तों की जरूरत नहीं है। साल 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो लोग कह रहे थे कि यह सरकार 25 साल तक चलेगी, लेकिन पिछले 4 साल में बीजेपी ने कई जगहों पर अपना बहुमत खो दिया है। केरल की चेंगानूर सीट में सीपीएम ने जीत हासिल की है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ नजर दौड़ाएं तो नागालैंड की टोखेहो लोकसभा सीट पर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं मेघालय की अम्पाती विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है।
रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा की 11 सीटों और लोकसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे क्या किसी बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे हैं? यही समझने के लिए मैंने वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त से बात की।
नतीजों का संकेत बहुत साफ है कि जिस तरह की एकजुटता विपक्ष ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बाकी राज्यों में दिखाई है, अगर इसी तरह की एकजुटता बनी रहेगी तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए काफी मुश्किल भरा होगा। इसी तरह से आप देखिएगा कि बिहार में नीतीश कुमार की हालत भी खस्ता होती नजर आ रही है, क्योंकि जब से वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ जुड़े हैं तब से तीन उपचुनाव उनकी पार्टी हार चुकी है। अररिया का संसदीय उपचुनाव था, उसके बाद उसी सीट से जो विधायक थे उनकी पार्टी के जोकीहाट में, जो बाद में आरजेडी के सांसद बन गए, जोकीहाट में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें अभी ताजा ताजा हार गई उनकी पार्टी और 45,000 वोटों से हार गई। उसके बाद फिर उसके पहले जहानाबाद का जो चुनाव हुआ था, जहानाबाद विधानसभा का, उसमें भी आरजेडी ने नीतीश कुमार और उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी थी। फिर तीसरा ये रघुवर दास है जो झारखंड में मुख्यमंत्री है, उनके यहाँ भी जो जो उपचुनाव इधर हाल के हो रहे हैं सब में भाजपा को मुंह की खानी पड़ रही है। दूसरी बात यह है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय में जोर तोड़ करके अपनी सरकार बना ली अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के, पूर्णो संगमा के बेटे की नेतृत्व में, कुंडराज संगमा के नेतृत्व में सरकार बना ली, लेकिन वहां पे जो अभी उपचुनाव हुआ वहां भी कांग्रेस जीत गई है। और नागालैंड में भी जहां की कांग्रेस काफी अभी मजबूत रहती थी लेकिन बाद में बीजेपी ने मिलकर सहयोगी दलों से वहां सरकार बना ली, उसका भी जो संसदीय उपचुनाव हुआ है वहां भी अभी तक जो खबरें आ रही हैं एससी जमीर साहब का बेटा जो कांग्रेस समर्थित है वो चुनाव जीत रहा है, अपोक जमीर है। इस तरह से ये देखें तो एक तो ये तस्वीर उभरती है। दूसरी तरफ पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां अमरिंदर सिंह की पार्टी कांग्रेस से, जो शाहकोट का उपचुनाव हुआ है विधानसभा का, वो कांग्रेस ने बड़े बहुमत से जीत लिया है। कर्नाटक में अभी अभी जो सरकार बीजेपी की वो हटी है वहां से और कांग्रेस और जनता दल एस ने मिलकर सरकार बनाई है, वहां पर भी एक उपचुनाव हुआ है आरआर नगर का, उस उपचुनाव में भी कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया है। तो एक तरफ तो कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हो रही हैं उनका उम्मीदवार जीत रहा है, दूसरी तरफ जहां भाजपा और उसके गठबंधन के सहयोगी दलों की सरकार है वहां वहां भाजपा और एनडीए के समर्थक उम्मीदवार हार रहे हैं। महाराष्ट्र में आप देखिए भंडारा गोंदिया की सीट।
मैं जयशंकर जी इसी सवाल पर आ रहा था, महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के संबंध थोड़े से और खट्टे होते दिख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी कुछ खरी खरी बातें कह गए हैं बीजेपी को लेकर।
उद्धव ठाकरे लगातार आक्रामक हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन अब वो पता नहीं उनकी कौन सी एक मजबूरी है जो उनको भाजपा के साथ जोड़े हुए है, क्योंकि केंद्र की सरकार में शिवसेना का अभी भी एक मंत्री है और महाराष्ट्र की सरकार में शिवसेना अभी भी साझेदार है। इस बार जो पालघर का उपचुनाव हुआ है, हालांकि उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं कि उनको हराया गया, वो हारे नहीं है बल्कि हराया गया है, तो ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। और जिस तरह से पालघर में कांग्रेस ने वहां एक तरह से परोक्ष समर्थन ही इनको दिया था, उसका उम्मीदवार तो मैदान में था जिसको विद्रा नहीं कर पाए वो लोग, और लेकिन बहुत कम वोट मिला उसको, जिसका मतलब लगता है कि उसने शिवसेना को परोक्ष रूप से मदद तो की होगी, लेकिन अगर 1-to-1 उम्मीदवार हो जाता तो फिर बात चुनाव का अलग हो जाता, उसका दृश्य थोड़ा और बदल जाता। तो मेरे ख्याल से जो एक पहल चल रही है विपक्ष की एकजुटता का, यानी बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार अगर इस तरह का होगा तो फिर तो बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब देखिए पश्चिम बंगाल में भी तमाम बातें हो रही थी, ममता बनर्जी के खिलाफ सब बातें कर रहे थे लोग, लेकिन उनका उम्मीदवार बहुत बड़े बहुमत से जीत गया है। इसको एक क्वार्टर फाइनल मान के चलना होगा, क्योंकि इसके बाद अभी आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विधानसभाओं के चुनाव का सामना करना पड़ेगा, और इन चारों राज्यों में भाजपा के मुकाबले कांग्रेस किसी मामले में भी कहीं से कमजोर नजर नहीं आ रही। तो अगर कुछ महीने अभी बचे हुए हैं, इन महीनों में अगर वो कुछ कर सके तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है कि सेमीफाइनल भी उनके हाथ से निकल जाएगा।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त, जो हालिया विधानसभा और लोकसभा की जिन सीटों पर उपचुनाव हुए उनके नतीजों का विश्लेषण कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले में जंगल में 20 साल के एक युवक की लाश पेड़ से लटकी मिली। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि ये युवक उसका कार्यकर्ता था और ये राजनीतिक हत्या का मामला है। इस खबर पर और जानकारी के लिए मैंने कोलकाता में वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी से अब से कुछ देर पहले बात की।
जी, ये मंगलवार रात की घटना है। वो युवक त्रिलोचन महतो जो था वो मंगलवार को अपने घर से निकला था शाम को, आधे घंटे बाद उसने फिर घर फोन किया कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन फिर और आधे घंटे बाद उसका फोन आया कि मुझे कुछ लोगों ने घेर लिया है, मोटरसाइकिल सवारों ने, और मेरी हत्या की धमकी दे रहे हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने फिर फोन किया, थोड़ी देर बाद ही तो फोन उसका बंद था। फिर पुलिस में गए, इन्होंने शिकायत की, लेकिन रात को कोई पता नहीं चला। और सुबह घर से थोड़ी दूर पर जंगल में एक पेड़ से शव लटकता हुआ मिला, तो गांव वालों ने देख के उसके घर पे खबर दी। तो अब इससे लेकर काफी वहां तनाव है और बीजेपी ने आज इलाके में 12 घंटे बंद भी रखा है, माहौल भी गर्मा गया है। उसके पिता हरिराम महतो, वो बीजेपी के इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे जाने जाते हैं, पंचायत चुनाव जो हुए थे उसमें बेटे ने भी, त्रिलोचन ने भी काफी काम किया था पिता के कारण, और उस इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा था। पुलिस के एसपी ने कहा, जय विश्वास से मेरी बात हुई थी सुबह, तो उन्होंने कहा अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं, लेकिन पहली निगाह में जो लगता है कि हत्या यहां हुई नहीं है, कहीं और हुई है, और इसको मारकर कहीं से यहां पेड़ पर ले आके लटका दिया गया था। प्रथम दृष्टिया यही लगता है उन्होंने कहा आपसी दुश्मनी का मामला लगता है। इस बीच उसके पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है 6 लोगों के खिलाफ, तृणमूल कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद रिपोर्ट। और दूसरी ओर ममता बनर्जी के भतीजे जो सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, इनका दावा है कि वो बजरंग दल और बीजेपी के आपस के झगड़े का नतीजा है। उन्होंने दावा किया कि इसमें तृणमूल का कोई व्यक्ति शामिल नहीं है और अगर कोई शामिल है, सबूत मिले तो मैं उसे खुद जेल भिजवाऊंगा।
प्रभाकर जी, यहाँ पर लगे हाथ ये भी बताते चलिए, अभी जब पिछले दिनों पंचायती चुनाव हुए थे तब भी हमने राजनीतिक हिंसा की बहुत खबरें और वहाँ की तस्वीरें देखी सबने, क्या वजह है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के मामले ज्यादा सामने आते हैं?
ये दरअसल बीते कुछ सालों से जब से बीजेपी यहाँ कदम जमाने की कोशिश कर रही है उसी समय से तृणमूल के साथ उसका टकराव बढ़ रहा है। और बीते 2-3 वर्षों में ऐसा हुआ है कि हर चुनाव में कांग्रेस और सीपीएम को पीछे छोड़कर बीजेपी नंबर 2 पे आती रही है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के साथ उसका काफी फासला अधिक है अभी भी। जैसे आज महेशतला विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए, इसमें भी बीजेपी दूसरे नंबर पे रही, हालांकि 62,000 से ज्यादा वोटों से हारी है। फिर भी कांग्रेस और सीपीएम, पिछली बार सीपीएम वहां नंबर 2 थी, इस बार वो तीसरे नंबर पे रही है और काफी कम वोट मिले हैं। तो बीजेपी जैसे जैसे ग्रामीण इलाकों में खासकर पांव जमाने की कोशिश कर रही है तो इसी वर्चस्व की लड़ाई में टकराव बढ़ रहा है।
ये थे कोलकाता से वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की मुलाकात के लिए सिंगापुर और अमरीका में बातचीत जारी है। वही मुलाकात जो एक हफ्ते पहले, जिसके बारे में खबर आई थी कि अब ये मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अब उस मुलाकात को मुकम्मल बनाने की कोशिशें जारी हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन, बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी के पास। इरम, न्यूयॉर्क में, अमरीका में, सिंगापुर में दोनों नेताओं की मुलाकात के लिए किस तरह की बातचीत हो रही है, क्या जानकारी है आपके पास?
जी बिल्कुल, आज अमरीकी एहलकार और नॉर्थ कोरिया में जो नॉर्थ कोरिया के सरबराह हैं उनके करीब समझे जाने वाले जनरल के दोबारा सेक्रेटरी पोम्पियो से मिलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कल वो चाइना से आए और उन्होंने जो है खाना खाया अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मिस्टर पोम्पियो उनके साथ। मिस्टर पोम्पियो ने इस बारे में ट्वीट भी किया कि मुलाकात अच्छी जा रही है, खाने में स्टेक है, कॉर्न है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी मुलाकात से पहले ट्वीट के जरिए बताया था कि वो चाहते हैं कि बातचीत जो समिट प्रेसिडेंट ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के जो सरबराह हैं उनके दरमियान जून में होनी है, 12 जून को कहा जा रहा है, उसको यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है, न्यूक्लियर एबिलिटी जो है वो कोरियन पेनिनसुला में कम करे या उसको ख़त्म किया जाए। हम ये जानते हैं कि साथ ही साथ सिंगापुर में, जैसा कि आपने भी कहा कि वहाँ पर भी मुलाकातें जारी हैं, जो साउथ कोरिया में अमेरिका के एम्बेसडर रह चुके हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं नॉर्थ कोरियन एहलकारों के साथ, सरकार के साथ। इतवार से ये मुलाकातें जारी हैं जिसमें ब्रेक्स भी आ रही हैं, लेकिन ये बातचीत मुसलसल जारी है। आज जो है दोबारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के जो हैं वो मिलेंगे जनरल किम के साथ।
इरम, मैं यहाँ इरम मैं आपको टोक रहा हूँ। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि अभी फिलहाल बातचीत नहीं हो सकती है उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके साथ, तब उनकी खासी आलोचना भी हुई थी कि भाई क्या ढुलमुल सी नीति है आपकी, इस तरह से अमेरिका के भीतर से इस तरह की आवाज़ें निकली थी। अब जबकि दोबारा बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, अमरीका के भीतर किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह की आवाजें सुनने को मिल रही हैं?
जी हम ये जानते हैं कि जब मुलाकात की बात हुई थी तो उसके बाद एक हफ्ता पहले नॉर्थ कोरिया को जब लीबिया के साथ अमेरिका में मिलाया गया था तो नॉर्थ कोरिया से फिर गुस्से वाली बहुत सारे बयान आए थे, जिसकी वजह से ये जो समिट है, ये जो मुलाकात जून में होनी है वो खटाई में पड़ गई और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अचानक से फैसला किया कि ये मुलाकात नहीं हो रही। कहा यह जा रहा है कि अमरीका को नॉर्थ कोरिया के बारे के मामले पर सदर ट्रंप जो है वो अभी तक जल्दबाजी करते आए हैं। नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत जरूर होनी चाहिए क्योंकि बातचीत जो है वो एक वाहिद जरिया है जिसके साथ आप अमन ला सकते हैं खत्ते में, लेकिन साथ ही साथ बाज रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ये भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो प्लान है वो क्लियर नहीं है। क्या बातचीत से ये वाकई तय हो जाएगा कि नॉर्थ कोरिया अपनी न्यूक्लियर एबिलिटी जो है उसको खत्म करने के लिए तैयार है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे भरोसा जो है अमरीका में कम किया जाता है, तो इसलिए अब देखना ही है कि मुलाकात होती है या नहीं।
बहुत शुक्रिया। ये थी वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी, जो बता रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनकी मुलाकात के लिए सिंगापुर और अमरीका में अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही है। और अब वक्त हो चला है आपकी चिट्ठियों का,
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ स्टूडियो में मैं हाजिर हूं राजेश प्रियदर्शी।
और मैं हूं सरोज सिंह।
तो आइए शुरुआत करते हैं चिट्ठियों की।
आज मैं ईमेल से शुरू कर रही हूं। सबसे पहला ईमेल है, शिव कुमार जी ने लिखा है। कहां से लिखा है ये बताते हैं, बिहार के हैं। इनका कहना है कि बीबीसी का मैं नियमित श्रोता हूं। आपके द्वारा संचालित हर कार्यक्रम ज्ञानवर्धक एवं लाभप्रद होता है, लेकिन एक विषय पर ये अभी शंका में है। उनका कहना है कि कुछ दिन पूर्व आपके द्वारा निपाह वायरस के बारे में बताया गया था कि केरल में इसकी पुष्टि हुई है, परंतु सोशल साइट पर रोज ये खबर आ रही है कि सिर्फ केरल में ही नहीं भारत के कई अन्य राज्यों में भी ये फैल रहा है। बीबीसी ने इस पर कोई समाचार नहीं दिखाया। ये चाहते हैं जो संशय की स्थिति है वो तोड़ी जाए।
निपा वायरस के मामले दूसरे कुछ राज्यों से भी आए थे, लेकिन वो इतने गंभीर या इतने बड़े नहीं थे। और अब ये कुछ जो उसका संक्रमण है वो थमता सा दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में कोई ऐसी चिंताजनक खबर नहीं आई है। तो केरल वाला जो मामला था वो काफी बड़ा था और वो हर तरह से उसकी जांच परख की गई थी। और एक आध खबरें छिटपुट इधर उधर से बंगाल से आई थी और कई दूसरे राज्यों से आई थी। हमें लगा कि हमको इस बात का एक संतुलन रखना चाहिए कि हम किसी भी तरह का भ्रम या डर या घबराहट बेचैनी लोगों में न पैदा करें। वही वजह थी। और जबकि हम लगातार निपा वायरस के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे कि उससे बचाव के क्या तरीके हैं, वो कैसे फैलता है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें ये लगा कि जो उसकी संतुलित रिपोर्टिंग होनी चाहिए वो हमने की।
अगला जो ईमेल है वो सादिक आजमी साहब का है, सऊदी अरब से लिखते हैं। इनका कहना है कि प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, पर बीबीसी को इतनी ज्यादा अच्छी लगती है ये मुझे नहीं पता था। हम तो हर बार निष्पक्ष श्रोता के तौर पर प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी करते थे, लेकिन हमारी चिट्ठियों को प्रमुखता नहीं दी जाती थी। लेकिन आज तो शामिल कर लिया, शायद अब शिकायत दूर हो जाए।
देखिए, सऊदी अरब में हमारे बहुत सारे श्रोता हैं। आपने इतनी दूर से इतने प्यार से हमें खत लिखा और आप आलोचना करते तब भी आपकी चिट्ठी शामिल होती, तारीफ करते तो भी संभव है कि शामिल होती। कई बार बल्कि जब हम चिट्ठियां चुन रहे होते हैं तो इस बारे में बात करते हैं कि क्या प्रशंसा वाली चिट्ठियां बहुत ज्यादा हो गई, इनको हटाया जाए और इनकी जगह आलोचना वाली चिट्ठियां ली जाएं, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। और हमने आपकी देखी आपकी चिट्ठी, और आपसे पहले वाली चिट्ठी में भी हमसे शिकायत ही थी, कोई हमारी तारीफ नहीं थी, बल्कि कह रहे थे कि निपा वायरस के बारे में हमने ठीक से नहीं बताया। आप भी आखिर में आप भी शिकायत कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि आपकी शिकायत फिलहाल अब दूर हो गई होगी।
नहीं, लेकिन एक बार फिर वो सही साहब बताए, क्योंकि अंत में आते आते उन्होंने लिख दिया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विवेचना उन्हें बहुत पसंद आई है।
तो ये तारीफ की चिट्ठी है कि शिकायत की हमें नहीं मालूम, बस हमने शामिल कर ली है।
अगला जो खत है वो शिव कुमार तिवारी ने लिखा है ओरछा से। बहुत साफ हैंडराइटिंग नहीं है, लेकिन जितना मैं कुछ पढ़ पा रही हूँ उसमें ये है कि वो जल पर एक सीरीज चाहते हैं बीबीसी करे, क्योंकि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन्हीं पांच तत्वों में हमें विलीन हो जाना है, लेकिन जल उसमें से सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, वो ऐसा लिखते हैं।
बिल्कुल सही बात है। और अभी गर्मियों के दिन हैं और पानी का संकट और उसकी खबरें कभी हिमाचल से, कभी मध्य प्रदेश से, कभी महाराष्ट्र से, हर जगह से आ रही हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम पानी के बारे में बात करें और गंभीरता से बात करें और सब लोग सोचें कि आखिर हम किस तरह से जल का संरक्षण करें और किस तरह से अपना जीवन जिए कि हमें पानी का संकट न पैदा हो। मेरा ख्याल है कि अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। तो चलते चलते हम अपना पता आपको बता दें, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो पता वही है, hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
और चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं।
बीबीसी समाचार, देश के अलग अलग राज्यों की 4 लोकसभा और 11 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा। कुल 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 में जीत मिली। मानवाधिकारों के लिए बनी यूरोपियन कोर्ट ने लिथुआनिया और रोमानिया को आदेश दिया है कि वो अलकायदा समूह के उन 2 संदिग्धों को मुआवजा दें जिन्हें CIA के खास कार्यक्रम के तहत कैद में रखा गया था। BBC समाचार।
माफ करें, जबान फिसल गई। नवीन नेगी मुख्य समाचार सुना रहे थे। दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक राज भाटी और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया ब्रजेश मिश्र ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। दीजिए इजाजत।